beringas, bermababaki, sempurna takamas, hamsapkubhi, sempurna banne ke laksh prati, aur adhik jagrat karta hai, aur ham sabhi bhai behne bhi, चारों ओर सभी सेवा केंद्रों में विशेष योग तपस्या के कार्यक्रम बनाते हैं, क्योंकि पाप समान संपूर्ण बनने का लक्ष्य है, तो जरूरी है कि हम कुछ समय के लिए सभी बातों से न्यारे हो जाएं, स्वदर्शन करें, अपने आप से बात करें कि जो हमारा लक्ष्य है उसके प्रति हम कितने जागृत हैं, पुरुषार्थी हैं। आज इसलिए ब्रह्मा बाबा के जीवन की जो विशेषताएं हैं उसमें से एक विशेषता पर आज सभी ने चिंतन किया कि स्वप्न और संकल्प मात्र में भी अनासक्त, हालांकि ब्रह्मा बाबा स्वयं एक व्यापारी थे, परिवार वाले थे, लेकिन जैसे ही शिव बाबा ने वर्तमान कलयुगी दुनिया के होवनहार महाविनाश का और आने वाली नई सतयुगी दुनिया की राजाई के साक्षात्कार किए, उस साक्षात्कार मात्र से ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल ये निर्णय ले लिया कि अब मुझे सब कुछ समेट कर इस नई दुनिया की स्थापना के कार्य में लग जाना है। ये अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय है। व्यापारियों को, वैश्य वर्ण को धन का लोभ और संबंधों का मोह अधिक होता है, परंतु बाबा भक्ति में भी सच्ची लगन वाले थे, सत्य जानना चाहते थे, सतगुरु पाना चाहते थे और खुद भी मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने की लगन थी। यह हम सब जानते हैं बाबा की जीवन कहानी को। तो साक्षात्कार मात्र से बाबा सीधा वाराणसी से कलकत्ता चले गए और अपने पार्टनर को बाबा ने कह दिया कि मुझे अब बिजनेस नहीं करना है, जो मेरा हिसाब होता हो वो आप मुझे दे दो। अब व्यापारी को तो धन का कितना ध्यान रहता है, धन कमाने के लिए ही तो बिजनेस करते हैं, तो ऐसी धन की भी आसक्ति बाबा ने छोड़ दी और फिर पीछे मुड़ के देखा भी नहीं कि उसने हिसाब बरोबर किया या नहीं। जो दिया वो लेके बाबा हैदराबाद घर पर आ गए और बाबा ने जो अनुभूति हुई उसी के आधार पर ही सत्संग शुरू कर दिया। तो ये एक अनासक्ति का बहुत बड़ा कदम कि बाबा ने अपना परिवार के सहित, और ये भी इतना परिवार उनका सात्विक और आज्ञाकारी सहयोगी, जो बाबा के निर्णय पर पूरे परिवार ने भी सहमति दी और परिवार सहित बाबा इस ज्ञान यज्ञ को रचने और सेवा करने के लिए समर्पित हो गए। ये संबंधों में अनासक्ति का उदाहरण कि बाबा ने अपनी चल अचल संपत्ति और अपना परिवार सहित बाबा इस साधना में लग गए। तो भल बाबा ने हम बच्चों को समय अनुसार ये आदेश दिया है कि घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान बनो, तो हमें सिर्फ ये बात याद नहीं रखनी है कि बाबा ने कहा है ना, ग्रस्त में रहकर करना है। हमें ये अंडरलाइन ज्यादा करना है कि हमें कमल फूल समान रहना है। बाबा अपने परिवार सहित भल समर्पित हुए, पर बाबा ने बिल्कुल योगी बनकर, अनासक्त कर्म योगी बनकर ही परिवार वालों को चलाया। समर्पित तो शुरू में 350 हुए, पर परिवार वालों को कोई विशेष सुविधा दी या उनके लिए कुछ अधिक सोचा या ध्यान रखा, नहीं, सबको एक समान रीति से सबको चलाया। तो देह संबंधों का भाव न रहे कि ये पत्नी है, ये बेटी है, ये बेटा है, ये पुत्र वधु है, ऐसा कोई भी आसक्ति वाला व्यवहार बाबा ने नहीं किया। तो इतना डिटैच हो जाना और यज्ञ के नियम मर्यादा अनुसार उन सबको भी चलाना, ये एक बहुत बड़ी शक्ति की बात है। आज हमें यज्ञ के तरफ से मिली हुई सेवा होती है तो भी कई बार हम उस सेवा में, उस डिपार्टमेंट में अपना अधिक अधिकार रखते हैं। हम पहले खुद लाभ लेते हैं फिर दूसरों को देते हैं, तो ये भी एक प्रकार से आसक्ति कहा जाएगा। हमें भोग बांटते हैं तो पहले खुद के लिए रख लेना, ये भी एक प्रकार की आसक्ति, पर बाबा ने किसी के लिए ऐसा नहीं किया। और बाबा के अंतिम जन्म के ये भी, जो उनका परिवार, पत्नी बेटी पुत्र वधु, ये सब भी इतने ऊंचे संस्कार वाले कि उन्होंने भी कभी भी अपने मुख से ये नहीं कहा किसी को कभी भी कि ये तो हमारा ही तो दिया हुआ है। तो वो भी इतने संस्कारी सुसंस्कारी कि वो भी यज्ञवत्स की तरह रहे, परिवार की रीति से रहे। जैसे ही बाबा का ज्ञान मिला, ब्रह्मा बाबा ने देह भान मिटाने के लिए, संबंधों का आकर्षण या आसक्ति मिटाने के लिए आत्मा का पाठ पक्का किया। खुद तो आत्मचिंतन करते ही थे और अपने आप को बार बार कर्मेंद्रियों से अलग मैं आत्मा हूं ये अभ्यास तो बाबा करते ही थे, परंतु लौकिक संबंधों के साथ अनासक्त होने के लिए बाबा आत्मा का पाठ पक्का करते थे, लिखते थे कि मैं आत्मा हूं। यशोदा जो उनकी धर्म पत्नी है उसके लिए भी लिखते थे कि यशोदा आत्मा है, बेटा नारायण भी आत्मा है, पुत्र वधु राधिका भी आत्मा है। तो परमात्मा ने जिस आत्मा के पाठ से ईश्वरीय ज्ञान दान हम सबको किया, और अंतिम पाठ, अंतिम रिजल्ट नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का बताए, तो ब्रह्मा बाबा ने ये अभ्यास इतना किया कि बाबा के सबके प्रति रूहानी दृष्टि रही, न्यारेपन का अलौकिक व्यवहार रहा। व्यक्ति फंसता तो देह संबंध में है ना, औरों के लिए तो चलो आत्मा का लेसन पक्का कर लेंगे, पर खुद के परिवार के लिए भी डिटैचमेंट रखने के लिए बाबा ने ये अभ्यास किया और प्रैक्टिकल रिजल्ट बताया। इसलिए जैसे और दादियों को अलग अलग स्थानों पर सेवा में भेजा, बाबा ने यशोदा माता जो उनकी युगल, उनको भी कहीं कहीं दूर सेवा में भेजा, बेटी को भी कलकत्ता में सेवा में भेजा, पुत्र वधू को बॉम्बे में सेवा में भेजा। एक है साथ रहते न्यारा रहना और एक है प्रैक्टिकल दूर भेज देना। उसके लिए भी अनासक्त स्थिति की ही शक्ति काम में आती है कि जब सत्य ज्ञान मिल गया कि हम आत्मा हैं और हमारे अविनाशी सर्व संबंधी एक परमात्मा है, बाकी जिनको हम देह संबंध कहते हैं वो तो इस वर्ल्ड ड्रामा में पार्ट बजाने वाले सहपात्रधारी है, वो हमारे को एक्टर्स है, वो हमारे रिलेटिव्स नहीं। पर व्यक्ति देह में, संबंधों में और इस दुनियावी रोल में हम इतने आसक्त हो जाते हैं तो हम विशेष देह संबंधों में अटैचमेंट बनाने लगते हैं। तो हमें भी बाबा समान बनना है तो ये अभ्यास बहुत पक्का करना है। परिवार वाली आत्माओं को, संबंधियों को आत्मा समझकर व्यवहार करना, देखना, बात करना, लिखना, ये अभ्यास हमें करना चाहिए, क्योंकि अनासक्त बनने के बाद ही वास्तव में योग निरंतर और एक रस लगता है। नहीं तो हम अभ्यास करेंगे पर योगी की स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि अंदर में आसक्ति का बीज है। बाबा की युगल में जब शरीर छोड़ा, जिस सेंटर पर थे तो भी बाबा वहां नहीं गए, ये तो एक एक्सट्रीम नष्टो मोहा की स्थिति। इवन बाबा का जो चचेरा भाई था विश्व किशोर दादा, जो बाबा का राइट हैंड बन के सब कुछ संभाल रहा था, पर बिल्कुल न्यारा और प्यारा, उन्होंने जब बॉम्बे में शरीर छोड़ा तो भी बाबा ने कहा कि वहां ही अग्नि संस्कार कर दो। जब बॉम्बे की बहनें बाबा के पास आई समाचार देने तो भी बाबा अपनी बहुत ऊंची योग की स्थिति में थे, जो बाबा ने कहा कि जैसे किसी की डेथ होती है तो लौकिक में सब जाते हैं और बातें करते हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ, तुम ऐसी बात करने आई हो बाबा के साथ। तो ये अनासक्त स्थिति की मिसाल। तो हम सभी भी बाबा को फॉलो कर रहे हैं तो पवित्र जीवन फिर भी सहज बन जाता है, क्योंकि सत्य ज्ञान मिलते ही हम सबका भी तीसरा नेत्र खुल गया, आत्मिक दृष्टि वृत्ति बन गई, तो ब्रह्मचर्य का पालन सहज हम सबके जीवन में हो जाता है, क्योंकि ये सत्य ज्ञान की शक्ति है। परंतु अनासक्त बनने के लिए हमें खुद मेहनत करनी होती है। संपूर्ण रूप से यज्ञ को जीवन समर्पित हो और यज्ञ के नियम मर्यादा अनुसार हम चले, तो हमें मानसिक रूप से भी लौकिक परिवार का, लौकिक दुनिया का और दुनियावी जीवन पद्धति का, चीजों का, साधनों का कोई आकर्षण हमें नहीं होगा। पर ये साधना, ये परिवर्तन हमें खुद को ज्ञान सुना कर करना, हमारी बेहद की दृष्टि बन जाए कि लौकिक अलौकिक जो भी है वो सब आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं, कोई इस अंतिम जन्म में सहपात्रधारी है और अलौकिक परिवार के भाई बहने भी वो तो बाबा के बच्चे हैं और बाबा से वर्षा पाने के लिए आ रहे हैं, साथ दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, वो बाबा के कारण है। कोई मुझे मेरे कारण कोई नहीं सहयोगी, परंतु बाबा के ज्ञान और बाबा की याद के अभ्यास के कारण हम अलौकिक बन करके चलते हैं। तो रोज, क्योंकि प्रैक्टिकल कर्म भी करना है, एक दो के साथ रहकर सेवा भी करनी है, पुरुषार्थ भी करना है, पर उपराम न्यारा भी रहना है। हमारा मूल लक्ष्य है आपस में मिलकर संपूर्ण बनना है, और कोई कामकाज के लिए हम नहीं मिले हैं, हम सबका संगठन संपूर्ण बनने के लिए। एक अकेला तो पुरुषार्थ नहीं कर सकता, थक जाएगा, अलबेला हो जाएगा, तो ये संगठन बाबा ने बनाया, इसको अलौकिक परिवार कहा, विद्यालय कहा, ताकि हम मिल करके अच्छी पढ़ाई करें, एक दो को संपूर्ण बनने में सहयोग दे, ऐसे ही मिल करके सेवा करें ताकि विश्व कल्याण का कार्य संपन्न हो सके। तो जिस लक्ष्य से जो चीज बाबा ने बनाई है, हमें उस मूल उद्देश्य से इसको अपनाना, नहीं तो सेवा करते रहेंगे और आपस में आसक्त भी होते रहेंगे। बाबा हमें भोग खिलाते हैं, ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं, इसलिए कि यज्ञ के पालना का हम अनुभव करें। बाबा का भंडारा है, ब्रह्मा का भोजन है, उसकी पवित्रता और सात्विकता की हमें वैल्यू, हमें और अशुद्ध भोजन का आकर्षण ना हो, इसलिए बाबा हमें भोग ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं। पर अगर ये मूल उद्देश्य हम याद नहीं रखेंगे तो हम भोग भी खाते रहेंगे, ब्रह्मा भोजन भी खाते रहेंगे और स्वाद में जाते रहेंगे। स्वाद इंद्रिय पर विजय नहीं होगा, ये बाबा कहते हैं कि बाबा को भोजन स्वीकार कराकर, भोग लगाकर फिर खाओ, आसक्ति से नहीं। तो इस प्रकार टोटल अगर आप शांत चित्त से यज्ञ के आदि से लेकर अब तक का सिस्टम और परिवर्तन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सब धीरे 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 बाबा हमें अनासक्त बनाकर पक्का और सच्चा योगी बनाना चाहते हैं। शुरुआत में बाबा ने पारिवारिक पालना दी, पर ज्ञान के बीज के साथ। और हम सब देखते हैं धीरे 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 बाबा की पढ़ाई, पालना, प्यार, सबका स्वरूप बदलता गया। बाबा न्यारे हो गए, हमारा रिजल्ट क्या है? वही बाबा दिन रात बच्चों के साथ रहे। अव्यक्त होने के बाद अव्यक्त पालना में भी 12-12, 14-14 घंटे बाबा साथ रहे। धीरे धीरे बाबा का पार्ट बदलता गया, बाबा स्वयं न्यारे होते गए। हम क्या है, हम कहाँ है? हमें भी तो संपूर्ण बनना है, और इसलिए बाबा के ड्रिल में भी सुना ना कि दृढ़ निश्चय, जब तक आसक्ति होगी हम दृढ़ नहीं हो सके। तो खुद को हमें उपराम करना है कि यही महावाक्य ब्रह्मा बाबा ने सुनाए और हमारी दादियों ने भी अपने आप को इतना सहज तरीके से बाप समान अपने आप को बनाया और न्यारा, अव्यक्त कारोबार में भी न्यारे और अनासक्त बनकर सबको पालना दी, प्यार दिया, पर दादियां खुद भी न्यारी रहे। तो ये सारा संगम युग को ही आप देखिए, वही महावाक्य मुझे क्यों नहीं अनासक्त बना सकते? मुझे बनना है या नहीं बनना है? टाइम तो पूरा हो रहा है, भल हम समर्पित हैं या आप सभी ट्रस्टी भाई बहने हैं जो कमलफुल जीवन जीते हैं। हर एक को अपने आप से बात करनी चाहिए, अपने आप को ही हमें पक्का करना चाहिए, तो हम संपूर्णता का आनंद से स्वीकार करेंगे। हमें शरीर छोड़ने का भय नहीं रहेगा। आसक्ति के कारण ही तो भय आता है ना, क्योंकि हम अभी भी देह से, इस दुनिया से मैं रहना चाहते हैं। बाबा कहते हैं कि अब ये कलयुगी दुनिया रहने लायक नहीं है, ये खत्म होने वाली है। वैसे भी आत्माओं में कोई ताकत नहीं है, कोई उमंग, उत्साह, तेज, ओज, कोई आत्माओं में कोई दम नहीं है, शक्ति नहीं है। हर एक एक दो के स्वभाव संस्कार से दुख ही पाते रहते हैं, पर फिर भी उपराम नहीं होते। तो रोज बाबा से बात करना है कि बाबा आपने अपने लक्ष्य को पा लिया है, उस लक्ष्य को हम पाए उसके लिए भी आपने इतना साल हमें पढ़ाया है, पालना दी है, मुझे भी आपके जैसा बनना ही है, मुझे भी संपूर्ण बनना है, मुझे भी व्यक्ति, प्रकृति, परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त होना है। क्योंकि जब तक प्रभाव में आएंगे तो लगाव होगा, लगाव है तो झुकाव होगा, उसी तरफ, उस व्यक्ति के प्रति, उस स्थान के प्रति, उस साधन के प्रति हमारा मन ज्यादा जाएगा, धन ज्यादा लगेगा, समय लगेगा। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति, जो निर्लेप स्थिति है, आत्मा निर्लेप नहीं पर आत्माभिमानी स्थिति निर्लेप है, वो हमें सभी लेप क्षेप और प्रभावों से मुक्त रखती है। और सदा मन बुद्धि से हम ऊपर ऊपर वाले के साथ और अपने असली घर के साथ हमारा बुद्धि योग लगा रहे। जब तक आसक्त है हमें टचिंग्स भी नहीं आ सकते, क्योंकि अटेंशन वहां ही है जहां से हम अटैच हैं। अनासक्त बनेंगे तो बुद्धि बेहद की बनेगी और बाबा की डायरेक्ट टचिंग्स को हम कैच कर सके। बाबा ने अंत में शरीर छोड़ा, तब भी जो सामने बाबा के अनन्य बच्चे दादियां वगैरह थे, उसमें भी बाबा ने कहीं मन नहीं अटकाया। बहुत महान आत्माओं के जीवन चरित्रों में पढ़ते हैं कि लास्ट में उनको यही उलझन थी कि मेरे पीछे ये मेरा कार्य कौन संभालेगा। पर ब्रह्मा बाबा ने कोई ऐसी उलझन नहीं रखी, क्योंकि खुद बाबा बिल्कुल माध्यम बनकर ही रहे, कभी भी मालिक नहीं बने यज्ञ के कि मैंने इतना बड़ा रचा है। आज एक आश्रम संस्था में भी रचने वाले को बुद्धि रहती है, पर जो निस्वार्थ और निष्काम भाव से सेवा करते हैं वो अनासक्त होकर चलाते हैं। इसलिए बाबा एक तरफ कर्म भोग शरीर की बीमारियां, दूसरे तरफ दादियां पूरा यज्ञ, पर बाबा ने दोनों से अपने आप को डिटैच करके बाबा उड़ गए। बाबा की तुलना में तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, हम तो 2, 10, 50 के साथ जुड़े हुए हैं। वल संगठन बड़ा है पर हमारा डायरेक्ट जो संबंध है, जवाबदारी है या व्यवहार है, वो तो थोड़े से लोगों से है और थोड़ी सी सेवा का कारोबार है। तो न सेवा का, न डिपार्टमेंट का, न साथियों का, उसमें भी ऐसे मुझे योगी बनकर चलना है, सर्वात्माओं को सुख भी देना है परंतु न्यारा भी रहना है। तो बहुत महत्वपूर्ण बाबा की ये धारणा रही। आदि से अंत तक हम सभी ने बाबा के जीवन चरित्र को देखा है। अब समय आया है कि हमें भी अपने आप को न्यारा बनाना है, अनासक्त बनाना है, योगी बनाना है, एकरस बनाना है और संपूर्ण बन जाना है। ओम शांति।